एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो वाकई दिल को छूती है, शायद हिला कर रख देती है। ये है उबे मकपन की से यू आर वन ऑफ देम।
जी हाँ, और उबे मकपन वो नाइजीरिया के जेसुइट पादरी हैं। ये बात जरूरी है क्योंकि उनकी आस्था और उनका जो सामाजिक सरोकार है, खासकर अफ्रीका के सबसे कमजोर लोगों के लिए,
बिल्कुल,
वो उनके लेखन में साफ झलकता है। वो उन आवाजों को सामने लाते हैं जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, बच्चों की आवाजें खास तौर पर।
हाँ, और ये भी साफ करते हैं कि ये कोई एक सीधा सा उपन्यास नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असल में 5 लंबी कहानियां हैं, आप लघु उपन्यास भी कह सकते हैं।
अच्छा,
और हर कहानी अफ्रीका के एक अलग देश में घटती है। केन्या, नाइजीरिया, इथियोपिया, रवांडा अपने आप में पूरी हैं, पर कहीं ना कहीं एक थीम से जुड़ी हुई हैं।
ये किताब 2008 में आई थी और 2009 में जब ओपरा ने इसे अपने बुक क्लब में चुना,
हाँ, तब तो इसे बहुत पहचान मिली।
बहुत ज्यादा, और इसे कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, पेन ओपन बुक अवार्ड भी मिले। लोग इसे अक्सर, मतलब सोशल रियलिस्ट फिक्शन कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा उदाहरण मानते हैं।
जी, ऐसी कहानियां जो समाज के, मतलब कड़वी सच्चाई को बिना किसी पर्दे के दिखाती हैं।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन कहानियों की तह तक जाएं, उन बच्चों के सफर को समझें और जो सवाल ये उठाती हैं उन पर भी थोड़ी बात करें।
और इन सबका जो मूल विचार है वो ही इतना पावरफुल है। अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में बच्चों की आंखों से देखे गए संकट, गरीबी, ट्रैफिकिंग, जाति नफरत, नरसंहार, सब कुछ।
सही कहा, और यहीं पर अकबर की जो क्राफ्ट है वो कमाल करती है ना, वो बच्चों की मासूमियत, उनकी कभी कभी नासमझी का इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, बिल्कुल, ताकि हम जो बड़े हैं अपनी दुनिया की नाकामियों को ज्यादा साफ देख सके।
इससे वो क्या कहते हैं, ड्रामेटिक आयरनी पैदा होती है।
हाँ, बिल्कुल, हम पाठक तो समझ रहे होते हैं कि असल में क्या हो रहा है, पर वो बच्चा, वो पूरी तरह नहीं समझ पाता, और यही चीज दिल पर लगती है।
और यहीं से वो सवाल उठते हैं कि ये बच्चे जीते कैसे हैं इन हालात में, समझते कैसे हैं अपनी दुनिया को, और उनका नजरिया क्या बताता है उन समाजों के बारे में जिन्होंने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया।
अक्सर कहानी शुरू होती है तो बचपन की झलकियां दिखती हैं, खेल कूद, भाई बहन का प्यार, छोटी छोटी चीजें, लेकिन धीरे धीरे वो मासूमियत, वो टूटती जाती है। उसका बिखरना ही इन कहानियों का इमोशनल कोर है। ये कोई आसान जवाब नहीं देती किताब, मतलब ये एक तरह की गवाही है।
गवाही, हाँ ये सही शब्द है, एक गहरी गवाही
आपको झिंझोड़ देती है बस।
तो चलिए फिर इन गवाहियों को सुनना शुरू करते। पहली कहानी एन एक्समास फीस्ट, ये हमें केन्या ले जाती है।
जी, यहाँ हम मिलते हैं मायशा से। 12 साल की है, नैरोबी की एक झुग्गी में रहती है, अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार, जिम्मेदार, शायद हालात ही ऐसे हैं। परिवार भयानक गरीबी में है, छोटा भाई बीमार है, दवा के पैसे तक नहीं है, और कहानी का जो सबसे मुश्किल हिस्सा है वो ये कि परिवार, मतलब परिवार ही उसे वेश्यावृत्ति में धकेलता है।
ओ, ये तो,
हाँ, ताकि भाई की दवा आ सके और क्रिसमस पर, जिसे वो एक्समास कहते हैं, थोड़ा ठीक खाना मिल सके। उसका सफर वो कोई आम कहानी जैसा नहीं है, वो अंदर से कठोर होती जाती है, अपने घावों को अनदेखा करना सीखती है।
और परिवार के साथ रिश्ता कैसा रहता है उसका?
बहुत उलझा हुआ, प्यार भी है, गुस्सा भी है, और एक मजबूरी का एहसास भी। कहानी का क्लाइमैक्स वो एक्समास फीस्ट है, वो दावत, लेकिन उसका हर निवाला कड़वा लगता है क्योंकि उसकी कीमत का एहसास बहुत भारी है, और अंत तक आते आते वो जैसे इसे, इस जिंदगी को स्वीकार कर लेती है जो शायद सबसे दर्दनाक है।
ये कहानी वाकई बहुत परेशान करने वाली है, दिखाती है कि कैसे हद से ज्यादा गरीबी वो सबसे बुनियादी रिश्तों को भी कैसे बदल सकती है, उन्हें खराब कर सकती है।
हाँ,
और मायशा का उसे काम या ड्यूटी समझना, ये दिखाता है कि कैसे भयानक चीजें नॉर्मल बन जाती हैं, और सवाल उठता है उस दुनिया पर जो बच्चों को ऐसे चॉइस देती है।
और परिवार के अंदर भरोसे का टूटना, ये एक अहम बात है। यही भरोसे का टूटना, लेकिन एक अलग तरह से हमें अगली कहानी में भी मिलता है।
आप फैटनिंग फॉर गबों की बात कर रही हैं, नाइजीरिया वाली कहानी?
जी हाँ, यहाँ 2 भाई बहन हैं, फोफो लड़का है, थोड़ा चालाक, दुनिया देखी हुई लगता है, और कपोनो उसकी बड़ी बहन, थोड़ी भोली, भरोसे वाली, अनाथ है, चाचा के साथ रहते हैं।
अच्छा,
चाचा वादा करता है गैबॉन ले जाने का, अच्छी जिंदगी, पढ़ाई लिखाई, तो बच्चे बहुत उम्मीद से भरे हैं। उन्हें लगता है चाचा ही उनका सब कुछ है।
और वो मोटा करने वाली बात, उसका क्या मतलब है?
हाँ, वो सबसे अजीब और खतरनाक चीज है। चाचा उन्हें खूब खिलाता है, मोटा करता है। बच्चे सोचते हैं ये प्यार है, देखभाल है।
किस सफर के लिए तैयार कर रहा है?
हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे सफर बढ़ता है, कुछ अजीब इशारे मिलते हैं, खतरे के संकेत। पर बच्चे अपनी मासूमियत में, या शायद उम्मीद में, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
और फिर?
फिर सच सामने आता है, और वो किसी बुरे सपने जैसा है। पता चलता है चाचा रक्षक नहीं, तस्कर है।
मानव तस्कर?
जी, वो उन्हें और कई बच्चों को गैबॉन ले जा रहा है, गुलामी के लिए बेचने। उनकी उम्मीद वो भयानक डर में बदल जाती है। ये कहानी विश्वासघात को दिखाती है, जब कोई अपना ही।
और कैसे उम्मीद को ही हथियार बना लिया जाता है?
हाँ बिल्कुल, वो उम्मीद ही उनके लिए जाल बन जाती है। जिस मोटा करने को वो प्यार समझ रहे थे, वो असल में, मतलब, उन्हें बाजार के लिए तैयार किया जा रहा था। ये बहुत ही बहुत तकलीफ देह है।
भरोसे का ये संकट ये बार बार आता है इन कहानियों में।
बिल्कुल।
और भरोसे के साथ साथ पहचान का संकट भी।
वो हमें इथियोपिया ले जाता है, तीसरी कहानी में। व्हाट लैंग्वेज इज दैट?
हाँ, इसका बैकग्राउंड जातीय तनाव का है शायद।
जी, कहानी का सेंटर है सेलमा, एक छोटी लड़की, ईसाई अहमारा समुदाय से। उसकी बेस्ट फ्रेंड ओरोमो मुस्लिम है। गहरी दोस्ती है दोनों में। सेलम इतनी छोटी है कि उसे बड़ों के बीच जो जातीय तनाव है, उसका कुछ पता ही नहीं। दोस्त बस दोस्त है, धर्म, समुदाय, ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता।
फिर मुश्किल कहाँ से शुरू होती है?
जब सेलम की माँ उसे उस मुस्लिम दोस्त के साथ खेलने से मना कर देती है, बिना कोई साफ वजह बताए।
और बच्चे के लिए समझना मुश्किल होता होगा।
बहुत। वो कंफ्यूज हो जाती है, माँ की बात और अपनी दोस्ती के बीच फंस जाती है। छुप छुप कर मिलने की कोशिश करती है। माहौल बिगड़ता जाता है, तनाव बढ़ता है। सेलम को समझ नहीं आता कि ये नफरत, ये किस जबान में बात करती है। दोस्त दुश्मन कैसे बन गए? कहानी एक हिंसक घटना के साथ खत्म होती है, जो उसकी मासूम दुनिया पर जैसे एक चोट करती है। उसे उस नफरत का एहसास होता है, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी।
बच्चों की नजरों से बड़ों के बंटवारे कितने बेमतलब लगते हैं, ये कहानी यही दिखाती है। कैसे नफरत एक जहर की तरह है जो पिलाया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी।
हाँ, और बच्चे उसे लॉजिक से समझ नहीं पाते।
उनकी वो उलझन ही सबसे बड़ी टिप्पणी है कि हम बच्चों को दे क्या रहे हैं।
और यही नफरत, लेकिन इस बार धार्मिक रूप में, हमें नाइजीरिया में फिर दिखती है। चौथी कहानी, लग्जूरियस हर्सेस।
अच्छा, ये कहानी तो शायद पूरी एक बस में ही चलती है।
हाँ, और वो बस जैसे एक छोटा सा नाइजीरिया बन जाती है, तनाव से भरा हुआ। हीरो है जुबरील, नॉर्थ नाइजीरिया का मुस्लिम लड़का। धार्मिक दंगे भड़के हैं, वो भाग रहा है जान बचाकर। एक भीड़ भरी बस में है, साउथ जा रहा है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे ईसाई होने का नाटक करना पड़ रहा है।
ओहो।
वो डरा हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन अंदर से वो बहुत धार्मिक भी है, दुआएं पढ़ता रहता है।
तो हर पल ये डर कि कहीं पकड़ा न जाए।
बिल्कुल, हर शब्द, हर हरकत, यहां तक कि सोच पर भी पहरा। बस में अलग अलग धर्म के लोग हैं, बहसें होती हैं तीखी, धर्म पर, राजनीति पर, दोनों तरफ का पाखंड, पूर्वाग्रह सब दिखता है।
और जुबरिल ये सब सुन रहा है?
हाँ, और उसका डर बढ़ता जा रहा है। तनाव तब बढ़ता है जब बस चेक पॉइंट पर रुकती है और एक यात्री पुलिस को उस पर शक करने के लिए कहता है।
फिर
कहानी का अंत हमें पता नहीं चलता। हमें उसी अनिश्चितता में छोड़ दिया जाता है जिसमें जुबरिल है। उसका संघर्ष अंदरूनी ज्यादा है, पहचान बनाम जिंदगी।
ये कहानी तो सीधे सीधे किताब के टाइटल से जुड़ती है, से यू आर वन ऑफ देम। कहो कि तुम उनमें से एक हो, अपनी पहचान छिपा लो।
हाँ, जिंदा रहने के लिए।
कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। और वो बस, जैसे पूरा देश ही एक तनाव भरे सफर पर है। कोई इंसानियत की झलक दिखती है उसमें?
शायद बहुत हल्की सी कुछ लोगों में, लेकिन डर का माहौल इतना ज्यादा है कि वो दब जाती है। कहानी ज्यादातर डर और पहचान के संकट पर ही है।
और पहचान का यही संकट एक और भी ज्यादा भयानक रूप में हमें आखिरी कहानी में मिलता है, माय पेरेंट्स बेडरूम।
ये रवांडा नरसंहार के समय की है।
हाँ, ये सुनना भी मुश्किल है।
मेन कैरेक्टर है मोनिक, छोटी लड़की। माँ तुत्सी हैं, पिता हूतू।
मिक्स्ड हेरिटेज।
जी, नरसंहार शुरू होता है तो वो और उसका भाई जीन अपने माँ बाप के बेडरूम में पलंग के नीचे छिप जाते हैं,
जान बचाने के लिए।
हाँ, और वहां छिपे हुए वो सुनते हैं कि कैसे उनका प्यार करने वाला पिता बदल रहा है, हूतू मिलिशिया के दबाव में, नफरत में बहकर वो हिंसा में शामिल हो रहा है। वो अपनी ही पत्नी, उनकी माँ के लिए खतरा बन रहा है।
ये कल्पना करना भी मुश्किल है, एक बच्चा अपने पिता को ऐसे बदलते हुए सुने।
बिल्कुल, मोनिक का सफर अपने ही परिवार को टूटते देखने का है। उसे वो सच समझना पड़ रहा है जो नामुमकिन लगता है, कि उसका पिता उसकी माँ की जान ले सकता है। उनका बेडरूम, जो सुरक्षा की जगह होनी चाहिए थी,
वो जंग का मैदान बन गया।
हाँ, और कहानी का अंत उसी बेडरूम में माँ बाप के बीच एक भयानक टकराव से होता है, जिसे बच्चे छिपे हुए सुनते हैं।
ये कहानी परिवार की वो दोहरी तस्वीर दिखाती है, पनाह भी और खाई भी। कैसे बाहरी नफरत घर के अंदर के रिश्तों को भी तबाह कर देती है। और यहीं वो टाइटल वाली बात फिर आती है।
हाँ, जब माँ बच्चों से कहती है, कहो कि तुम उनमें से एक हो, मतलब अपनी तुच्छी पहचान छिपाकर हूतू बताओ ताकि बच सको।
जिंदगी की कीमत, पहचान मिटाना।
इन पांचों कहानियों का अगर एक साथ देखें तो कुछ थीम्स हैं जो बार बार आती हैं।
हाँ, जैसे सबसे पहले तो मासूमियत का खत्म होना, द एनाइलेशन ऑफ इनोसेंस। हर कहानी में बड़ों के झगड़ों की कीमत बच्चे चुकाते हैं।
बिल्कुल, और बच्चों की नजर से देखो तो बड़ों के ये बंटवारे कितने बेतुके लगते हैं।
द एब्सर्डिटी ऑफ एडल्ट डिविजन्स, सेलम की उलझन, जुबरील का ऑब्जर्वेशन।
परिवार की भूमिका भी कभी सुरक्षा, कभी सबसे बड़ा खतरा।
फैमिली एज बोथ शेल्टर एंड अबिस, मायशा का परिवार, मोनिक का।
हाँ, और पहचान का मुद्दा तो है ही, आइडेंटिटी एज अ टूल फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए पहचान बदलना, जुब्रैल, मोनिक के बच्चे।
और आखिर में धर्मी आस्था, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फेथ, कई वो सहारा है जैसे जुब्रैल के लिए।
तो कई वही बंटवारे और हिंसा की वजह भी है।
बिल्कुल,
ये सारे थीम्स अकबरनी ने बहुत बारीकी से बुना है। हर कहानी अलग है, पर साथ मिलकर वो अफ्रीका में बचपन की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बनाती हैं।
और जिस तरह से ये कही गई हैं, वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बच्चे के नजरिए से।
हाँ, वो हमें सीधा उनके मन में ले जाता है, उनका डर, उनकी उलझन हम महसूस करते हैं।
और वो ड्रामेटिक आयरनी और बढ़ जाती है, क्योंकि हम ज्यादा जानते हैं।
बिल्कुल, और हर बच्चे की आवाज अलग है, असली लगती है। लोकल भाषा का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है।
अकपन की लिखने की ताकत भी कमाल है, वो सेंसरी इमेजरी, नैरोबी की झुग्गी की गंध, उस बस की घुटन, रवांडा के बेडरूम की आवाजें।
हाँ, लगता है हम वहीं हैं।
ये सिर्फ दिमाग पर नहीं, दिल पर असर करती हैं। और सिंबल्स भी बहुत पावरफुल हैं, एक्स मास फीस्ट, वो बस, बेडरूम।
हाँ, वो सिर्फ जगह या चीजें नहीं रहती,
इन्हें पढ़ना आसान नहीं है। बेचैनी होती है, दुख होता है, गुस्सा आता है, और गहरी हमदर्दी भी।
हाँ, ये ऐसी कहानियां नहीं है जिन्हें आप भूल जाएं। ये आपको गवाह बनाती हैं, आपकी अपनी दुनिया पर सवाल उठाती हैं।
बिल्कुल, इनका असर रहता है, एक नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं। शायद अब अफ्रीका की कोई खबर पढ़ेंगे तो सिर्फ आंकड़े नहीं दिखेंगे।
हाँ, मायशा, फोफो, सेलिम, जुब्रिल, मोनिक, इनके चेहरे याद आएंगे।
और ये सवाल कि क्या हमारी चुप्पी भी कहीं ना कहीं,
और इतनी तकलीफ के बाद भी, कहीं एक बहुत धीमी आवाज में इंसान की हिम्मत की बात भी है। बच्चे जैसे गुजरते हैं इन सबसे, उसमें एक अजीब सी ताकत है।
हाँ, शायद वही एक बारीक सी उम्मीद की किरण है। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि अंधेरा बहुत है, पर शायद इसीलिए रोशनी की, सहानुभूति की जरूरत और भी ज्यादा है।
और शायद इसीलिए ये आज भी जरूरी हैं। ये हमें बंटवारों से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते जुड़ने को कहती हैं। साहित्य की यही तो ताकत है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।